ओम शांति। हम सभी बाबा के प्यार में डूबकर उसका आनंद ले रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा से प्यारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जिन जिन से भी हमारा प्यार रहा वह कभी टूटता रहा, कभी उधेर बुन में रहा, कभी संबंध में टकराव आता रहा, मनमुटाव आता रहा, न जाने कितने प्रकार की स्थितियों से हम सभी गुजरते रहे। लेकिन जब बाबा हमें मिला, बाबा की अनुभूति हम बच्चों ने की, तो हमें महसूस हुआ कि बाबा का ये निस्वार्थ प्यार, स्नेह भरा प्यार, आत्मिक प्यार सिवाय बाबा के और कोई भी नहीं दे सकता। हम अनेक संबंधों में आते हैं, लास्ट में कई अनुभूतियों के बाद हमारे मुख से यही निकलता है, सब स्वार्थ का संबंध है, सब स्वार्थ के बंदे हैं। अगर किसी का स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ हमारे द्वारा तो वो हमारे से मुख मोड़ लेता है। लेकिन अपने प्राण प्यारे बाबा के लिए हमारा दिल क्या कहता है? दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। दिल से बार बार बाबा के लिए शुक्रिया अदा होता है, बार बार धन्यवाद निकलता है, बार बार दिल से मन में एक उमंग की जागृति होती है कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला। अगर बाबा न होता, अगर बाबा हमें न मिला होता तो हमारे जीवन की क्या अवस्था होती? जब हम दोनों लाइफ को कंपेयर करते हैं, उस लाइफ को और इस लाइफ को, तो ये महसूसता आती है कितना बाबा ने हमें प्यार किया, कितना बाबा ने हमें दुलार दिया और कितना स्नेह से हम बच्चों की पालना कर रहा है। क्या ऐसी पालना और कोई दे सकता है? हम स्वयं से ही पूछें, अपने आप से पूछें, क्या बाबा जैसी पालना कोई व्यक्ति, कोई संसार का मानव दे सकता है? बच्चा अगर धूल माटी में गंदगी से भर जाता है तो तो माँ उसे साफ करती है, दूसरा स्वच्छ वस्त्र धारण कराती है, और जब बच्चा बार बार ऐसा ही होता है तो कई बार छोड़ भी देती है। लेकिन बाबा की विशेषता क्या कि वो रोज हमें रगड़ रगड़ करके साफ करता है। इतना प्यार बाबा से हमें मिलता है, बाबा हमें इतने प्यार से सफाई करता है जो कोई माँ बाप भी नहीं कर सकते। प्रतिदिन लक्ष्य शोप से हमारे को स्नान कराता है। दुनिया में लोग लक्ष्य सोप लगाते हैं, इंटरनेशनल लक्ष्य सोप लगाते हैं, लेकिन बाबा ने हमें कौन सा सोप दिया, कौन सा साबुन दिया? लक्ष्य रूपी सोप। लक्ष्य को हमारे सामने रखकर मुरली के मधुर महावाक्य सुना सुना करके वो हमारे को प्रतिदिन साफ कर रहा है, और हम अनुभव करते जाते हैं कि कैसे मुझ आत्मा की सफाई होती जा रही है, कैसे हम आत्माएं स्वच्छ होते जा रहे हैं। मुझ आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ था वो कैसे धीरे धीरे साफ हो रहा है। सिर्फ साबुन लगाने से भी शरीर साफ नहीं होता, जहाँ जहाँ मैल बैठ जाता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा साधन अपनाते हैं या कपड़े से भी रगड़ रगड़ करके ही साफ करते हैं, तब वो मैल छूटता है। तो भगवान वही है जो अपने बच्चों को रगड़ रगड़ करके साफ करे। क्या बाबा वो कार्य नहीं कर रहे? बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन मुरली के माध्यम से मुझ आत्मा की सफाई कर रहा है, इतने प्यार से, इतने स्नेह से, और बार बार दुलार पुचकार करके समझा कर हम बच्चों की सफाई कर रहा है। तो इतना बाबा से प्यार, बाबा ने हमें प्यार किया है तो हमारा भी बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। बाबा कहता है कि बाबा ही संसार है, सदा ये बुद्धि में रखो। मेरा संसार जो शरीर का था, बाल बच्चे दादा मामा काका, ये सब शरीर के संसार और संसार के संबंधी, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी भी संबंध की कमी होती है तो बार बार उसकी स्मृति आती है, और जो संबंध हमारे पास नहीं है तो उसको ख्याल में ला ला करके हम कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। मान लो किसी बहन को अपना भाई न हो, और जब रक्षाबंधन आता है, कोई ऐसा भाई बहन का त्योहार आता है, तो उस समय उस बहन को कितना दुख लगता है, लगता है ना? क्योंकि एक संबंध का अभाव है, उसे भाई नहीं है। किसी का पुत्र न हो, किसी का मामा न हो, किसी का चाचा न हो, तो कभी कभी वो अभाव हमें दुखी बना देती है। लेकिन जब सर्व संबंध हम अपने प्यारे बाबा से जोड़ते हैं तो किसी भी संबंध की कमी हमारे जीवन में खलती नहीं, क्योंकि वही माता पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही सर्व संबंधी है, साजन है, सदगुरु है, सब है। तो सर्व संबंधों का सुख देने वाला जब बाबा हमें मिल गया तो हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती, किसी भी चीज की अभाव का, किसी भी संबंध के अभाव का दुख उत्पन्न होना वो हम भूल जाते हैं। और कई बार कई भाई बहनों ने अनुभव भी किया है कि जिस संबंध के रूप से उन्होंने बाबा को याद किया और बाबा ने हाजिर होकर के उस संबंध का सुख दिया, एक माता बीमार थी, बूढ़ी माता, उसे बहुत बुखार हो गया, बहुत फीवर बढ़ गया। अब उसमें ये शक्ति नहीं कि वो उठ करके पानी उठा सके, पी सके, उसको प्यास भी बहुत लग रही है। फिर उसे स्मृति आया कि बाबा ने तो कहा है कि बच्चे तुम जब मुझे जिस संबंध से याद करेंगे तो मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। अगर आज मेरा कोई बच्चा यहाँ पर होता, मुझ माँ को कोई पानी पिलाता, मेरा कंठ सूख रहा है उसे गीला करता, तो आप अगर मेरे पुत्र हो तो आप भी इस प्रकार की सेवा करो ना। माना इतना अधिकार से उस माता ने संकल्प किया। और ऐसे ही बाबा से बात करते करते उसको नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो उसे स्वप्न आया और उसने देखा कि एक 10-11 वर्ष का बालक सामने में खड़ा है, हाथ में एक गिलास पानी लिए हुए, और माँ को कह रहा है, माँ उठो, माँ उठो, पानी पियो। उसने उठ करके पानी पिया, ये सब स्वप्न में ही वो माता देख रही है, पानी पिया, अपना आपको तृप्ति लगा और फिर उसी अवस्था में आ गए और बच्चा चला गया। फिर जब उसकी आंख खुली, नींद से जब जागृत हुई तो उसने देखा कि यहाँ रूम में तो कोई भी नहीं है, दरवाजे लगे हुए हैं, सब जैसा था वैसा ही है, वो बच्चा गया कहाँ? उसने बच्चा बच्चा कह करके पुकारा, कहाँ गए कहाँ गए, तो वो तो है ही नहीं, कहाँ से आता? वो तो शिव बाबा बालक बन करके आया और उसे तृप्त करके गया, उसकी प्यास बुझा करके गया। तो ये भी कितना माना अंतर मन को छू देने वाला अनुभव कि माता ने बच्चे के रूप से बाबा को याद किया और बाबा पुत्र रूप में आकर के माँ की सेवा करके चला गया, उसको जिस चीज की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करके वहां से अंतर ध्यान हो गया। तो उस समय जब उसकी जागृत अवस्था हुई तो माता को ख्याल आया कि तो सचमुच में बाबा आया था और बाबा आकर के बालक बन करके मेरी सेवा करके गया। तो बहुत उसके आंखों से दिल से माना उद्गार पैदा हुआ, और जब दिल में उद्गार पैदा होते हैं तो फिर वो आंखों से भी बहने लगे। तो बाबा क्या कहता है, ऐसी आत्माओं की बांधेली माताओं का एक एक आंसू वो क्या है, एक एक मोती के समान, और वही मोती का हार बाबा के गले में पड़ता है। तो जिसका जिससे जिसके साथ बहुत प्यार होता है तो प्यार में भी आंसू बहते हैं। भक्त भी कोई कृष्ण के भक्त होते हैं, कोई राम के भक्त होते हैं, तो भक्त भगवान को याद कर कर के वो प्रेम के आंसू उनके बहते रहते हैं। एक बार हम सभी बाबा के साथ पांडव भवन से नक्की लेक की तरफ जा रहे थे, बाबा भी साथ में थे और कई बच्चे भी थे, 10-12 बच्चे। उस समय तो बाबा के समय अगर 20-30 बच्चे भी आ गए तो कहा जाता था फुल सीजन है मधुबन का, क्योंकि बच्चे कम थे, स्थान भी छोटा था, और थोड़े बच्चे आने से भी बाबा इतने खुश होते थे, कहते थे मेरा ये जो बगीचा है वो फूलों से भर गया, चैतन्य फूलों से भर गया। तो बाबा उस समय बाहर जाते थे तो बाबा पहाड़ी की तरफ जब जा रहे थे तो साइड में एक झोपड़ी था, और उस झोपड़ी में एक माता बहुत सुंदर गीत गा रही थी, और उस गीत का अर्थ कि वो भगवान को बुला रही है, हे भगवान तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी, राजस्थानी भाषा में वो गा रही थी और भगवान को बुला रही। तो वहीं बाबा रुक गए, चलते चलते ब्रह्मा बाबा रुक गए और कहा कि देखो बच्चे, ये जिस भगवान को याद कर रही है, जिस भगवान को बुला रही है, लेकिन इस गाने वाली बच्ची को ये पता नहीं है कि इसका गीत स्वयं भगवान सुन रहा है। स्वयं भगवान इस रथ में इस बच्ची का गीत सुन रहा है। तो उस समय माना हम लोग तो छोटे छोटे थे ही, लेकिन एकदम जैसे बाबा का ये कहना और जैसे एकदम रोमांच खड़े हो गए कि ये बच्ची जिस भगवान को पुकार रही है वही भगवान इस बच्ची का गीत सुन रहा है इस तन में आकर। तो प्यार से भगवान को बुलाना और परमात्मा प्यार में एकदम विभोर हो जाना वो तभी होता है जब हमने सर्व संबंध एक पिता शिव बाबा से जोड़ा हो, एक बाबा से हमारा जुड़ा हुआ हो। अगर हमारा मन बुद्धि इधर उधर जाता है, अनेक संबंधों में जाता है, तो उसमें इतनी प्यार की भावना, क्योंकि हमारा मन कहीं कहीं बटा हुआ है, जो गाया हुआ है मन के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा, तो अगर अनेकों में हमारी बुद्धि जाती रहेगी तो बाबा की तरफ कितनी लगेगी। बाबा की तरफ फिर कहाँ से जाएगी। तो हमेशा हम सभी का ये पुरुषार्थ हो कि बाबा के साथ ही हमारा कनेक्शन सदा ही जुड़ा रहे। बस मेरा है तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्लोगन तो हम सहज रूप से अवश्य बोलते हैं, गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और कोई है तीसरा? उसके लिए तो क्या कहेंगे, सिर हिलाएंगे कि नहीं, मना करेंगे कि नहीं? लेकिन फिर भी बार बार हम जब उसको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस संबंध वाला हूँ, जिस कर्म वाला हूँ, उस प्रकार जो बच्चे मुझे जानते हैं, उनको ही मैं सर्व प्राप्ति कराता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ। तो जब हम उसको अच्छी तरह जानकर, पहचानकर, सर्व संबंध जोड़कर हम उससे अपना संपूर्ण संबंध को अच्छी तरह से कायम रखते हैं, तो बाबा हमें सब कुछ प्राप्ति स्वरूप में दे देता है। खजाने तो हम सुनते हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, बहुत कुछ बाबा हम बच्चों को देता है। लेकिन उन खजानों को कायम रखना, वो हमारे से दूर न जाए, उस खजाने से हम वंचित न हो, तो उस खजाने की, उस तिजोरी की चाबी भी बाबा ने क्या कहा है? तिजोरी की चाबी क्या है? हम लॉकर में भी अगर रखेंगे, तिजोरी में भी रखेंगे, अलमारी में भी रखेंगे, तो उसमें तो चाबी लगाएंगे ना, बंद तो करेंगे। खोलने का आधार क्या है, चाबी क्या है? तो बाबा कहना, मेरा बाबा कहना, यही चाबी है। मेरा बाबा कहा और सर्व प्राप्ति हमें प्राप्त हुआ। चाबी से तिजोरी खोलेंगे तो सारा जो खजाना हमने भरा हुआ है वो तो दिखाई देगा ना सामने में, और उसी को देख करके हम खुश होंगे। एक जमींदार की, लैंडलॉर्ड की युगल, ये माना हम लोग के साथ ही घटी हुई बातें हैं तो आपसे शेयर करती हूँ। तो हम लोग उनके गांव गए तो जब उनके घर पहुंचे, सेवा हुई गांव के लोगों की, और गांव में सबसे बड़ा जमींदार भाई वो था। जब हम लोग ऊपर में गए, उनके घर के अंदर गए, तो मैंने देखा उनकी युगल ज्ञान में चलती थी, दोनों ही ज्ञानी बाबा के बच्चे, तो उन्होंने अपना तिजोरी खोला, इतना बड़ा सा तिजोरी था, उसे खोला, उसमें जेवर, पैसे, आभूषण जो भी सब रखे हुए थे, खोल करके देखा। पहले तो कुछ समय तक खोल कर देखती रही और अंदर ही अंदर खुश होती रही। माताओं को ज्यादा पसंद है ना आभूषण, अलंकार, जेवर, गहने, ये सब, तो देख देख करके अंदर ही अंदर वो खुश हो रही। तो मैं भी देखती रही, कि माता जी तो बहुत खुश हो रही हैं अपना जेवर अलंकार ये सब देख करके। फिर क्या किया, एक एक को निकाला और पहना, कान का पहना, गले का पहना, जो भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा अलंकार थे उसको भी अपने शरीर पर धारण किया। फिर दर्पण में देखा, उसके बाद खुशी तो चेहरे पर चमक के रूप से आ जाएगी, चेहरा चमकता रहा खुशी से, और फिर सारा उतार करके फिर तिजोरी में भर दिया। और शाम को हम सभी को लौटना था, हम लोग फिर साथ में लौट करके अपने सेवा स्थान पर आ गए। तो इससे क्या समझ में आता कि अगर हमारे पास खजाना है, प्राप्तियों का भंडार है, तो उसे देख देख करके हम खुश होते हैं। बाबा रूपी चाबी को अगर हमने लगाया, उससे अपना तिजोरी खोला, तो हमारे जो भी खजाने जो बाबा ने हमको प्राप्त कराए हैं वो सब सामने आएंगे। और उसे देख देख करके खुश होना और पुनः उसको धारण करना, वो तो स्थूल था, लेकिन अगर सूक्ष्म में जब हम उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है। हमारा खुश रहना ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें खुशी के लिए कोई साधन अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई गीत सुनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई डांस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने मनोरंजन के लिए या खुशी के लिए। लेकिन स्वतः ही आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है बाबा के उस प्यार में, बाबा के साथ लवलीन होकर के, एकदम ओतप्रोत होकर के जब आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है तो वही अनुभव करती है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी है तो सब कुछ है। बाबा कहते हैं ना, अगर खुशी नहीं है तो इस ये ब्राह्मण जीवन क्या है, मुर्दे के समान है। मुर्दे की अवस्था क्या होती है, शव की अवस्था क्या होती है, न हिलता है न डूलता है, उसके चेहरे की चमक भी खत्म हो जाती है, चेहरा बिल्कुल अलग सा हो जाता है। अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है, जब हम ये महसूस करते हैं तो हमारी स्थिति भी क्या हो जाती है, उदास हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, चेहरा लटक जाता है, पूरे उदास हो जाते हैं। कुछ कार्य करने में, कोई सेवा करने में मजा ही नहीं आता है, शिथिल हो जाते हैं। लेकिन जब खुशी रहती है, उमंग उत्साह रहता है, तो हम नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अपने आप शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है, अलर्टनेस आ जाता है। तो बाबा का प्यार प्राप्त करने के लिए बाबा से सर्व संबंध जोड़ना अति आवश्यक है। बस बाबा ही बाबा, जिधर देखो बाबा ही बाबा, बाबा बिना हमारा संसार नहीं है, बाबा बिना हमारा कोई नहीं है, बाबा जैसा कोई नहीं है। जब ये बार बार मन के अंदर ये उद्गार उत्पन्न होते हैं बार बार हमारा मन खुशी से मन मयूर नाच उठता है कि मुझे तो सारे जहान की खुशियां मिल गई, पूरे संसार की खुशी मिल गई, ऐसा अनुभव होता है। हम सभी ये अनुभव करते हैं कि जो खुशी हम चाहना चाहते प्राप्त करना चाहते थे, जो सुख प्राप्त करना चाहते थे, वो बाबा का बनने के पश्चात हमें प्राप्त हो गया। और जब प्राप्त हुआ तो उसके लिए बाबा हमें स्लोगन क्या देते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। किसी भी चीज की इच्छा उसकी अविद्या हो जाए, किसी भी मनोकामना उसकी अविद्या हो जाए, जैसे हमें जानकारी ही न हो इच्छा नाम की कोई चीज है, देवी देवताओं का जीवन कैसा है, वहां कोई इच्छा है, वहां कभी कोई इच्छा करता हो मेरे को ये चीज होता तो अच्छा होता, मेरे पास ये होता तो अच्छा होता, उसके पास ये चीज है मेरे पास ये नहीं है, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, सतो प्रधान है, तो इसलिए इच्छा नाम की कोई चीज ही नहीं उनके लाइफ में। तो हम सभी भी कौन हैं? हम भी तो यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं सभी तो होवनहार देवी देवताएं हैं ना, हम भी तो देवी देवता बनने के लिए चले हैं ना, हमारा भी भविष्य क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है, देवी देवता तो बनना है ना। तो देवी देवताओं का जीवन जैसा हमारा भी जीवन हो, हमारे दिल के अंदर कोई इच्छा उत्पन्न न हो, और वो तभी होता है जब हम बाबा को सदा साथ रखते हैं, बाबा को साथी बना करके रखते हैं, क्योंकि बाबा तो हमारा साथी भी है और सहयोगी भी है। दुनिया में लोग एक दूसरे का प्यार पाना चाहते हैं, जब शरीर का भान होता है तो कईयों के मन में ये संकल्प आता है कोई मुझे प्यार से देखे, कोई मुझे प्यार से बोले, कोई मुझे प्यार से मेरा पीठ ठोके साबसी दे, कोई मुझे प्यार करे। लेकिन जब हम अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो क्या ये सब कामनाएं ये सब इच्छाएं हमारे जीवन के अंदर अंतरात्मा के अंदर होंगी? क्योंकि बाबा से हमें जो सच्चा प्यार मिला उस सच्चे प्यार ने और सब प्यार को भुला दिया, और हमें किसी के प्यार की आवश्यकता नहीं। कोई हमें पूछे या ना पूछे, आज तो सभी को पूछ लगी हुई है ना। कोई कहता है कि हमारा मान सम्मान नहीं हुआ, किसी ने हम कहीं गए किसी ने हमको टोली भी नहीं पूछा, हम इतना गर्मी में गए बहन जी ने हमें पानी भी नहीं पूछा, हमने इतनी सेवा की हमें दो टोली भी पीस भी नहीं दिया। कई बार ऐसा मन में आ जाता है ना। जहां भी जाओ सभी जगह पूछ पूछ की ही बात है, हमें पूछा नहीं या हमको पूछो। लेकिन लंका में आग कब लगी? लंका में आग कब लगी? जब पूछ को आग लगाया। हनुमान जी पहले तो कूदते फांदते रहते थे, इधर उधर दौड़ भाग करते रहते थे, लेकिन जब उनके पूछ में आग लगी तो लंका को भी समाप्त किया। महावीर भी कहलाए, उनका पूजन भी आरंभ हो गया। मन के अंदर राम सीता भगवान भगवती को रखा, सारी दुनिया उनको मानने लगी। तो बाबा कहते हैं कि पूछ पूछ की जो पूछ है ना, उसको समाप्त करो, उस पूछ को खत्म कर दो। और जब इस इच्छा से रहित हो जाएंगे तो अपने आप लोग आपको पूछेंगे। इच्छा रूपी चिड़िया के पीछे जितना भागेंगे वो चिड़िया उड़ती जाएगी, दौड़ती जाएगी, भागती जाएगी, लेकिन जितना हम उसको छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक पूछ पूछ जो है, मान सम्मान जो है, अपने आप आएगी। हम औरों को मान देंगे, सम्मान देंगे, ऑटोमेटिक मिलेगा। हम औरों को पूछेंगे, दूसरे हमें ऑटोमेटिक पूछेंगे। ये इतना सुंदर सिस्टम है जिसको बाबा ने कहा बच्चे रेस्पेक्ट देने का रिकॉर्ड बनाओ, रिगार्ड दो, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बनाओ। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों का जीवन इतना सुंदर जीवन, इतना श्रेष्ठ जीवन, इतना महान जीवन किस आधार से बना? अगर बाबा का प्यार न मिलता तो क्या हम बन सकते थे? भाई बहने तो सेवाधारी हैं, निमित हैं, निमित बन करके बाबा की मुरली सुनाते हैं, हम लोग सुनाते हैं या कोई भी भाई बहन सुनाते हैं, लेकिन उस मुरली से भी हमें क्या छलकता है? हम ये नहीं सोचते हैं कि ये बहन सुना रही है या कोई भाई सुना रहा है, ये बाबा की मुरली है, ये बाबा के महावाक्य हैं। तो उस मुरली से भी, पढ़ने वाले से भी बाबा की सूरत दिखाई देती है, बाबा के बोल हमारे कानों में गूंजते हैं। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये सुनाया, क्या हम कहते हैं क्या ये बहन जी ने सुनाया, भाई जी ने सुनाया? जब हम सभी क्लास करके आते हैं तो आज बाबा ने क्या बताया? अगर कोई न भी आया हो, रास्ते में भी मिला हो तो ऐसा होता है ना, पूछते हैं क्या आज बाबा ने क्या सुनाया, आज बाबा ने क्या कहा, या आज बाबा ने मेरे लिए ऐसा कहा वैसा कहा, आज बाबा ने मेरे को बहुत अच्छा वरदान दिया, आज मेरे लायक बाबा ने ऐसी पॉइंट कही, आज बाबा ने ऐसी बात कही जो मेरे दिल को तीर की तरह चुभ गई, तो किसने कहा? किसी व्यक्ति ने नहीं, भले निमित्त मात्र जिसने भी सुनाया, लेकिन बाबा ने सुनाया। हम सभी फील करते हैं ना, अनुभव करते हैं ना, बाबा ने सुनाया, बाबा ने कहा। तो उसके आधार से ही बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार हम सभी बच्चे अनुभव करते हैं। कभी कभी बाबा आंख भी दिखाता है, बच्चे तुमको मैंने इतनी राजधानी दी, इतना स्वराज्य दिया, इतना तुमको देवी देवता बनाया, इतना माला माल किया और तुमने सब गवा दिया। कभी कभी बाबा इस तरह से भी कहता है, कभी कभी बाबा प्यार से भी कहता है, बच्चे तुम देवता ही थे ना, तुमको तो मैंने देवी देवता बनाया था ना, उस समय तुम्हारी चाल चलन कैसी थी, तुम्हारा मन कैसा था, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा था, कितना अकीचार धन था। लेकिन माया ने सब लूट लिया, माया सब ले गई, या रावण ने हड़प लिया। तो वहां पर प्यार भी झलकता है और वहां आर भी झलकता है, थोड़ा बाबा आंख भी दिखाता है। कभी कभी बाबा क्या कहता है, तुम देवता थे और फिर क्या बन गए। इसलिए बाबा कहता है, इतने अधिकार से कहता है, इतना प्यार से कहता है कि हमें रियलाइज हो, हम अपने अंदर अंतर मन में झांक कर झांकने का मौका मिलता है कि हम क्या थे और क्या बन गए। हमारी स्थिति इतनी ऊंच थी, आज ऐसी बन गई। जब ये रियलाइजेशन हमारे अंदर आता है तब हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने का। तो बाबा कितनी प्यार से हमारी पालना करता है और बहुत सहज उपाय बताता है कि बच्चे जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो तो क्या मालूम पड़ता है, चेहरे में कहीं कुछ दाग तो नहीं है, कुछ अस्वच्छता धूल मिट्टी तो नहीं है, मालूम पड़ता है। तो बहुत सहज पुरुषार्थ है कि आप अपने आगे हर दिन आप लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने बैठो। क्लासरूम में तो लक्ष्मी नारायण का फोटो रहता ही है, या कहीं भी रहता हो, अपने सामने लक्ष्मी नारायण के फोटो को, चित्र को अपने सामने लाओ, फिर देखो उनमें और हमारे में क्या अंतर है। हम भी तो वही बनने जा रहे हैं, नर से नारायण बनने जा रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बनने जा रहे हैं, देवी देवता भगवान भगवती बनने जा रहे हैं। तो हम उसे अगर देखेंगे उस तस्वीर को तो हमारी तदबीर भी चलेगी, हमारा पुरुषार्थ भी चलेगा कि उनमें और हमारे में क्या अंतर है। उनका मस्तक कैसा है, उनके नैन कैसे हैं, उनका लिबास, उनका चाल चलन, उनकी अवस्था, सारी बातें हमारे समक्ष हमारे नैनों के सामने आ जाती हैं। उनका मस्तक कितना चमकता हुआ है, उनके नैन झील जैसे शांत एकदम पवित्र निर्मल, चेहरे पर मधुर मुस्कान हर्षित मुक्ता, शरीर में स्थिरता, बाग में टहलते हुए चाल चलन, जो भी है अगर उन सब चीजों को अपने सामने लाते हैं और अपने साथ मेल करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनमें क्या है और हमारे में क्या है। और अगर कुछ अंतर महसूस होता है तो उस अंतर को मिटाने की चेष्टा हम करेंगे। मस्तक चमकेगा कैसे? जितना हम अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति में रहेंगे, जितना आत्मा भृकुटि रूपी गुफा के अंदर, अंतर्मुखता की गुफा के अंदर बैठ करके बाबा को याद करेगी, अपनी स्व स्थिति का अनुभूति करेगी, तो आत्मा में जो शक्ति भरती जाएगी, वो शक्ति भी चेहरे के माध्यम से फूट फूट करके निकलेगी। बाबा का मस्तक जब हम सभी देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? थोड़ा देख करके अनुभव कीजिए। बाबा की आत्मिक स्थिति दिखाई पड़ती, पेशानी चमकता हुआ, ललाट चमकता हुआ दिखाई देता है। बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया आत्मा समझने का, वो तो एक अलग ही विषय है। बाबा के नैनों को देखिए, आत्मा की जो भी शक्तियां हैं वो नैनों से महसूस कर सकते हैं। भले कोई सामने बैठकर योग न कराता हो, लेकिन अगर बाबा को देख करके भी हम योग करते हैं तो हमें लगता है कि बाबा मुझे अपने नैनों के माध्यम से हमें शक्ति दे रहा है, योग का बल हमारे अंदर भर रहा है। बाबा के मुख को देखिए, तो इस तरह से बाबा का चेहरा, देवताओं का चेहरा और हमारा चेहरा, हमारे सामने तो सैंपल है। बाबा के सामने तो कोई सैंपल भी नहीं थे ना, कोई था? बाबा जो डायरेक्शन देता था साक्षात्कार के माध्यम से, दीदी दादियां जो भी ध्यान में जाती थी उनके माध्यम से ऑलमाइटी का जो भी संदेश आता था उस अनुसार बाबा पुरुषार्थ करता था, और जो भी हमारी दीदी दादियां हैं सभी उस पुरुषार्थ में लगे हुए रहते थे। तो हम भी जब उस तरह का पुरुषार्थ अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। तो इसलिए बाबा के संग रहकर, क्योंकि बाबा से जब मेरा प्यार है तो हम किसके साथ रहेंगे? जो फ्रेंड हमारा इंटीमेट होगा, बहुत निकटतम होगा, बहुत नजदीक क्लोज होगा, तो उसके साथ ही तो हम ज्यादा टाइम रहना चाहेंगे, ज्यादा टाइम उसके साथ ही तो हम बिताना चाहेंगे। तो बाबा हमारा प्यारा है, हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं, तो हमारा साथ, हमारा सारा दिन, हमारी दिनचर्या किसके साथ बीतनी चाहिए, ये हमको खुद सोचना है। जरूरत पड़ने से हम बाबा को साथ लेते हैं, जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर हम भूल भी जाते हैं। बाबा आप मेरा ये काम कर दो तो बहुत दिल से धन्यवाद, कार्य पूरा हो गया तो फिर कई बार भूल भी जाते हैं। लेकिन हर समय बाबा को हम दिल से दुआएं देते, दुआ तो क्या हम शुक्रिया अदा करते रहें, हमेशा बाबा को धन्यवाद करते रहें कि बाबा आपने हमारे जीवन को कैसा बना दिया, कितना श्रेष्ठ बना दिया, आपके प्यार ने, आपकी पालना ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, कितनी हमारे अंदर धारणा की शक्ति भर दी, कितनी आपने हमारे अंदर गुणों की शक्ति भर दी, ज्ञान की शक्ति भर दी, शक्तियों से हमें संपन्न बना दिया। इतना आपने हमारे जीवन को बदल दिया, परिवर्तन कर दिया और हमारा जीवन औरों के परिवर्तन के कार्य में संलग्न हो जाए। तो बाबा हम सभी बच्चों से यही शुभ आस रखता है, यही शुभ भावना रखता है कि मेरे बच्चे बहुत आगे जाएं, बहुत आगे जाएं, आगे जाएं। बच्चों को आगे करके बाबा खुद छिप जाता है। तो ये तो बाबा की ही कमाल है, बाबा की ही विशेषता है कि हम बच्चों को सदा ही विश्व के शोकेस में रखा हुआ है। हम सभी एक एक बाबा के सैंपल हैं। तो सैंपल तो बहुत अच्छा होता है ना, दुकानों में भी अच्छे अच्छे सैंपल जो होते हैं शोकेस में रखे जाते हैं, तो सुंदर सुंदर होते हैं, जिसको देख करके ही ग्राहक दुकान में घुसता है और सेठ जो होता है वो माला माल होता है। तो इस विश्व के शोकेस में बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर सैंपल के रूप से रखा है। तो हमारा जीवन भी बाबा की तरफ, देवी देवताओं की तरफ, और हम एक सच्चे बाबा के प्यारे बच्चे बनकर सदा ही बाबा के प्यार में, लव के की लीन अवस्था में हम रहें, लव में पूरा हम लीन हो जाएं, बाबा के प्यार में पूरा हम सराबोर हो जाएं, तो उस आनंद को हमेशा ही हम उपभोग करते रहेंगे। और हम अपने जीवन के बनाने के साथ साथ औरों के जीवन को भी बनाने में सदा ही तत्पर रहेंगे। तो बाबा की जो आश हम सभी बच्चों के प्रति है, उस आश को अवश्य ही हम पूर्ण करेंगे, यही हम सभी का दृढ़ संकल्प हो। अच्छा, ओम।
Yeah. ایک نئی تدبیر دی آپ